ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ऐसे विद्यालय में आप सब पधारे हैं। जरूर विद्यालय के इतिहास को जानना आवश्यक है, कैसे इसकी स्थापना हुई, बीज कैसे पड़ा, उसका वृक्ष कैसे बना और विस्तार कैसे पाया। इतिहास तो बहुत लंबा है, 90 साल का तो इतिहास ईश्वरी विश्वविद्यालय का है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की लौकिक जीवन भी 60 वर्षों की, वो भी इसी से जुड़ेगी। बाबा का जन्म उस समय अविभाजित भारत सिंध हैदराबाद में 1876 में हुआ। बचपन में भक्ति पूजा पाठ के घर में ही संस्कार थे, पिताजी एक अध्यापक थे और पूरा ही घराना कुल वैष्णव कुल था, वल्लभाचारी परिवार, इसलिए हर प्रकार की सात्विकता घर के अंदर, कभी भी कोई नॉन वेज शराब सिगरेट कोई भी प्रकार का प्रचलन नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ बाबा के अंदर भक्ति के बीज पड़ गए, संस्कार पड़े और उसके कारण आप श्री नारायण की अनन्य पूजा भक्ति करते थे। गीता पाठ के बिना तो आप पानी भी नहीं पीते, रोज गीता पाठ करना, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के अनेक संस्कार जैसे परिवार से देन में मिले थे। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ व्यापार शुरू किया और एक छोटे से व्यापार को बढ़ाते हुए आप एक प्रसिद्ध ज्वेलर बने और उस ज्वेलरी की उनकी दुकान जो थी वो कलकत्ता के अंदर थी। लौकिक में आपका नाम था लेखराज कृपलानी। दादा सिंधी में बड़े भाई को कहते हैं, मैं कभी दादा शब्द प्रयोग करूंगा कभी बाबा शब्द प्रयोग करूंगा, क्योंकि दादा का बचपन एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक परिवार में होने के कारण बड़ी दिव्य विभूति जैसे एक व्यक्तित्व तो था जो समाज में एक माननीय था। पिताजी प्राध्यापक होने के नाते उनकी स्टडी भी स्कूल में होती रही और धर्म के संस्कार भी बढ़ते गए। व्यापार शुरू किया अनाज से और जो भी कमाई होती, एक जैसे परिवार ने बीज डाला था कि कुछ हिस्सा धर्म के नाम पर निकालना है, दान पुण्य करना है, धर्माओं कहते हैं, तो बचपन से ही दान के पुण्य के संस्कार थे। भक्ति में गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए बचपन से ही आपने गुरुओं की शरण में जाना, उनकी दीक्षा और शिक्षा लेना। अपनी लौकिक लाइफ के अंदर 12 गुरु किए और जिस गुरु से जो अच्छी बात सीखने को मिली उसको अपने जीवन में उतारा। माला जाप करना, बहुत समय बैठ के ध्यान करना, एकांत में बैठना, जैसे भक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी। व्यापार करते जब वो कलकत्ता के अंदर हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहे थे, उसके पहले आपकी शादी हुई और एक बहुत आदर्श परिवार बना, जिसमें तीन बच्चियां और दो बच्चे, पांच का परिवार था। और उस परिवार में बाबा ने अपनी सब बच्चियों की शादी एक अच्छे कुल में, अच्छे समाज में की। तीन बच्चियां और एक बच्चे की भी शादी की। एक वो छोटा था जब बाबा ज्ञान में आए। करीब 60 वर्ष की उम्र तक बाबा ने इतना अपने बिजनेस को बढ़ाया, क्योंकि उस समय भारत के अंदर राजाओं की राजाई चलती थी। ब्रिटिश राज्य में हर प्रांत के, हर स्टेट के अलग अलग राजा होते थे, और बाबा की बनाई हुई ज्वेलरी को राजघराने के लोग बहुत पसंद करते थे। सोने के, हीरे के, अनेक प्रकार के जेवर बना के बाबा उनके घरों में सप्लाई करते थे। इसलिए उनका संबंध ऐसा राजाओं के साथ था जैसे कोई परिवार के सदस्य हों। उदयपुर राजा, बड़ौदा राजा, पटियाला का राजा, ऐसे ही नेपाल के राजा से भी बाबा का बहुत घरेलू संबंध था। कोई भी फंक्शन में बाबा को निमंत्रण देते, बुलाते, तो बाबा कहते मैं फंक्शन में तो जरूर आऊंगा, लेकिन जहां पर आप कोई पार्टी कर रहे हो वहां हमारी उपस्थिति में कोई शराब नहीं होगी, कोई नॉन वेज नहीं होगा। तो कभी कभी हंसी में राजाएं कहते कि बाबा आपके आने से हमारी पार्टी फीकी हो गई। लेकिन बाबा का अपना अच्छा सम्मान था, उस नशे में रहते थे, इसलिए राजाओं को लगता था कि शायद भगवान से कोई भूल हो गई, राजा मुझे बनाया और जिसके अंदर सब राजाई लक्षण हैं उनको एक व्यापारी बना दिया। लेकिन व्यापार में रहते हुए भी बाबा ने बहुत अच्छी सामाजिक सेवाएं की। लेकिन करीब 60 वर्ष की जब उम्र हुई तो बाबा को अंदर अंदर आंतरिक वैराग्य आने लगा। उनको इच्छा हुई कहीं एकांत में चले जाएं। तो बाबा की एक मित्र की कोठी थी बनारस के अंदर, तो उस बनारस में बाबा एकांतवास के लिए कुछ समय बिजनेस को समेटा और आए। उस एकांतवास में कोई खोए खोए रहते, कुछ ऐसे पेंसिल लेते, दीवालों पर चित्र बनाते, कुछ अलग ही विचार चलते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक बैठे बैठे ट्रांस में चले गए, साक्षात्कार शुरू हुआ। और उस साक्षात्कार में आपने इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दृश्य देखा। अपने जीवन में कभी उन्होंने स्टडी नहीं की थी, पढ़ा नहीं था कि ऐसे ऐसे कोई आणविक शस्त्र हैं जो एक ही पल में पूरी सृष्टि का संहार कर सकते हैं। बाबा की आयु भी 60 तो थी, लेकिन लौकिक में कभी सुना नहीं था। जब वो ट्रांस में गए, आंख बंद हुई, तो इस कलयुगी सृष्टि का बहुत भयानक महाविनाश देखा। आज तो हम सब सुनते हैं ये हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन एटॉमिक वार जो देखी उन्होंने कि एक स्थान पर कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है, बटन दबा देता है तो दूसरा पूरा प्रांत, देश का देश आग के हवाले हो जाता, बड़े बड़े भवन एक धर्म धराशायी हो जाते हैं। एटॉमिक वार से विनाश का दृश्य, और फिर दूसरी तरफ दिखाई दिया प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें उन्होंने देखा कि अचानक ऐसी बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, सुनामी आ रही है, जैसे चारों तरफ से प्रकृति अपना तांडव कर रही है। वो समय तो इतना प्रकृति में हलचल नहीं होती थी जो आज हम सब अनुभव करते हैं। अभी थोड़े समय पहले 2 दिन गुरुवार को अमेरिका के दक्षिणी भाग में वेनेजुएला में इतना जबरदस्त भूकंप आया है जो सारे घर धराशायी हो गए, मरे तो लाखों ही हैं, निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक के बाद एक आप हम सब सुनते हैं, लेकिन उस समय ये 1936 की बात है, बाबा ट्रांस में ऐसे गए हैं और इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश देख रहे हैं। एक तरफ एटॉमिक वार, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं और तीसरी तरफ गृह युद्ध। भाई भाई एक दूसरे को छुरा लगा रहा है, गुस्से में खूने नायक खेल, बिना हक मारे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को खून कर रहे हैं। अब ये दृश्य बाबा को दिखाई दे रहा है सामने, ऐसे जैसे कोई रियल सीन सामने आ रही है, और बाबा एकदम दुखी शांत होकर आंसू बहाते हुए आंख खोली, देखा है कुछ तो नहीं है सामने, क्या दिखाई दिया, क्या था, लेकिन क्या होने वाला है, ऐसा किसने मुझे दिखाया, अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तो दूसरा सीन उसी समय मर्ज हुआ, और उस सीन में उन्होंने देखा कि कुछ सितारे ऊपर से चमकते हुए नीचे आ रहे हैं, और वो बहुत सुंदर देवताओं की ड्रेस में, देवी देवताएं जैसे अवतरित हो रहे हैं। चारों तरफ खुशहाली, हरियाली, बड़े सुंदर बगीचे हैं, पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, दूध घी की नदियां दिखाई दे रही हैं, और हीरे जवाहरात के बने हुए सुंदर महल हैं। ऐसी स्वर्णिम दुनिया, जिस दुनिया को देख करके बाबा देख रहे हैं और आवाज सुन रहे हैं, बच्चे अभी ये दुनिया बनानी है, ये दुनिया बनानी है, कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, अनेक प्रश्न और उठ गए। बस वहां से उठे, फिर अपने गुरुओं के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे, भाई क्या ये दिखा रहे हो आप हमको, क्या होने वाला है। उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो कहें दादा ये कोई भगवान की लीला है, भगवान कुछ आपसे कराना चाहते हैं, मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता। बहुतों से पूछा, लेकिन एक खोज शुरू हो गई अंदर से, और उस खोज के कारण आप फिर बॉम्बे चले गए, क्योंकि बॉम्बे में बाबा का बहुत प्रसिद्ध शिवालय जो मंदिर है, बबुलनाथ जिसको कहते हैं, उसमें मंदिर में रोज जाना, जल चढ़ाना, पूजा करना, और फिर नीचे आकर के, नीचे मंदिर जो ऊपर शिवालय है और नीचे द्वारिकाधीश का मंदिर है श्री कृष्ण का, तो उस मंदिर में कोने में बैठ गए, कई घंटे ऐसे बैठे रहते हैं। तो एक दिन वो श्री कृष्ण की मूर्ति से, द्वारिकाधीश से विष्णु चतुर्भुज प्रकट हुए सामने, और बिल्कुल साक्षात खड़े होकर के कहते हैं, अहम विष्णु तत्त्वम, अहम विष्णु तत्त्वम, मैं कौन हूं, मैं तो पुजारी हूं, मैं तो इसकी भक्ति करता हूं, मैं ऐसा कैसे बन सकता हूं, ये कहां और मैं कहां, लेकिन ये कौन कह रहा है, ये किसकी कृपा हो रही है, क्या होने वाला है। बस वहां से आए और अपने व्यापार जो साथी था, भागीदार, उसको कहा कि आपको अगर व्यापार करना है तो करो, ये अभी हीरे जो है मुझे तो पत्थर दिखाई देते हैं, अब मुझे व्यापार नहीं करना। अब वो तो कुछ जानता ही नहीं था, ज्वेलरी में परखने की शक्ति चाहिए। कहे दादा आपको कुछ हो गया है क्या, इतना लाखों करोड़ों का व्यापार है, और अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो पहचाने नहीं है, इसकी कीमत का ही मुझे पता नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको जो करना है करो, मुझे भी नहीं करना। तो बाबा ने अपने भतीजे को बुलाया, बाजू में उसकी दुकान थी भाई की, लड़के की, उसको कहा कि तुम इससे बात करना, अगर ये व्यापार करना चाहे तो इसको छुट्टी दो, और नहीं करना चाहे तो जो बंटवारा करना है कर लेना, लेकिन मुझे या नहीं रुकना। तो उस समय बाबा ने एक गीत गाया, बनाया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, आई तार लफ की हुआ रेल का राही, ट्रेन ली और सीधा ही कलकत्ता से हैदराबाद चले गए अपने जन्म स्थान पर। जब वहां पहुंचे तो बाबा का हाव भाव एकदम जैसे कोई वैरागी होता है, लेकिन परिवार में ये कोई को पता नहीं था कि कोई बाबा कोई अलग अनुभव कर रहे हैं। इसलिए एक दिन फिर से गुरु को बुलाया और अपने घर में सत्संग रखवाया। सत्संग शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग संगठन में सत्संग कर रहे हैं, लेकिन बाबा अचानक उस सत्संग में उठ गए, सुनते सुनते उठ गए। तो जब उठने लगे तो उनकी बहू सामने थी, युगल सामने बैठी थी, कि ऐसा तो बाबा ने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया। और सदा कहते थे कि गुरु के सत्संग से उठना माना गुरु की बेइज्जती करना, उसका डिसरिगार्ड करना, यह अपमान है उसका, इसलिए कभी नहीं उठना चाहिए। लेकिन जब बाबा खुद उठे तो बच्चे बैठे थे परिवार वाले, उनको संकल्प आए कुछ तो तकलीफ होगी, कुछ तो कारण होगा, बाबा उठे क्यों। तो बाबा अपने कमरे की तरफ ऐसे धुन में गए, और जब कमरे में गए तो चारों तरफ से बहुत सुंदर सुनहरा गोल्डन प्रकाश पूरे कमरे में छाया हुआ था। अब इनकी युगल, इनकी बहू पीछे पीछे देखने के लग से क्या हो रहा, क्यों बाबा गया। और बाबा जाते ही अंदर घुसते ही अपनी गद्दी पर बैठ गए, जैसे कोई तपस्वी बैठता ना, ऐसे गद्दी पर बैठे। और बैठते ही बाबा का एकदम चेहरा लाल, पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा हुआ। तो जो संबंधी थे वो तो गेट पर खड़े रहे, वो नहीं अंदर घुसे कि देखें क्या हो रहा है। थोड़ी देर में ही बाबा के मुख से तीन शब्द निकल रहे हैं, जो अपना शिव बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, निराकार परमात्मा, जिसका शायद आपको लेसन मिला है आज, मिला है आज, उस निराकार परमात्मा शिव ने इनके तन में प्रवेश किया। और यही शब्द उच्चारण किए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अब ये शब्द मुख से बाबा के निकल रहे हैं, और सामने साक्षी हो के वो देख रही है बहू बेत युगल। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो लाइट गुम हुई, और बाबा जब थोड़ा जागृत अवस्था में आए तो सामने से पूछा, बाबा क्या देख रहे थे, क्या था। तो बाबा के मुख से निकला, बच्ची कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, मुझे नहीं पता क्या था। तो बाबा को बोला, बाबा ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण हो रहे थे, हो सकता है बच्चे। बाबा ने अपनी पहचान दी, लेकिन शिव बाबा ने मुख से बोला, ब्रह्मा बाबा तो ट्रांस में थे, लेकिन उसके बाद जो उनके जीवन में परिवर्तन आया, वही पुरानी पद्धति गीता सामने है, पढ़ना शुरू किया और गीता पढ़ते पढ़ते गीता पढ़ना छूट गया और उनके मुख से गीता निकलने लगी, वही सत्य वचन भगवान के उच्चारण होने लगे। और जो सुनने वाला है अगर बाबा उनके बीच में ओम की ध्वनि दे दे, ओम कहे और सारी सभा ट्रांस में चली जाए, और जिसको ऐसे दृष्टि दे दे वो साक्षात्कार गुम। तो थोड़े दिन में प्रचार हो गया कि क्या है बाबा के पास। तो जो बाबा ओम कहता है और सब सतयुग में श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, और कई बार बाबा का ये शरीर गुम हो जाता और यहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिखाई देता। तो इतना प्रचार हुआ हैदराबाद में, जो हर घर से, भाई लोग तो बिजनेस करते थे लेकिन माताएं आने लगी, एक दूसरे को सुनाएं कि बाबा के पास चलो, वहां स्वर्ग दिखाई देता है, वहां श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो करीब एक दो महीने में ही बाबा के सत्संग में जो 8-10 लोग आते थे, वो 2000 का संगठन हो गया। और बाबा अपने घर की दीवार तोड़ करके बड़ा करते गए आंगन को, प्रचार प्रसार खूब हुआ। लेकिन बाबा के जो महावाक्य सुनते उसमें दो तीन बातें जो विशेष थी, जो उन्होंने कन्याओं माताओं ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। पहले तो सुनते थे सोचते थे भगवान ने श्री कृष्ण के लिए कहा, लेकिन भगवान डायरेक्ट कह रहा है कि हे आत्माएं, हे बच्चों, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत, और अगर इन देवताओं की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए, तो तुम्हें उस दुनिया में चलने के लिए जो भोग उनको खिलाते हो वही खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना। अब ये कन्याएं माताएं जो आती थी सत्संग में, कोई नई नई शादी की हुई होती, कोई शादी करने की उस एज में होती, तो सब के घर जहां जाएं और उनके घर का माहौल ही बदल गया, क्योंकि वहां तो विशेष करके सिंध में सब लोग शराब पीते, नॉन वेज खाते, कहते मगध देश है, मगरमच्छ खाने वाले, तो उनके घरों का वातावरण चेंज। और जब उनके पति घर में आए तो कहे नहीं, मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे तो शुद्ध शाकाहारी बनना है, मैं तो बनाऊंगी भी नहीं ऐसी चीजें। तो धीरे धीरे सबके घरों में झगड़े होने लगे, ये कौन सा ज्ञान है और कहां से तुम सीख के आई। दादा का नाम आता तो शायद दादा कलकत्ता में रहता था, वो काला जादू सीख के आया, और जिसको देखता है वो स्वर्ग में चला जाता, ये कौन सा ज्ञान है। लेकिन सत्संग में जो बहने आ रही थी सत्संग में, यहां पर चित्र आप देखेंगे, ये सब दादियों के चित्र लगे हैं, उसमें दो बहने आई जो एक सबसे ऊपर दिखाई ना, उनका नाम था राधा, और ये जो दादी इधर दिखाई दे रही हैं इनका नाम था रामा। ये दो कुमारियां थी, एक ही बेंच पर पढ़ती थी, एक ही स्कूल में, और करीब 17-18 साल की उम्र थी। जब बाबा के सामने आई तो बाबा को परख भी लिया और बाबा ने इनको परख लिया, तो बस बाबा ने दृष्टि दी और कहा, बच्चियों अभी तुम इस सत्संग को संभालो। लेकिन कैसे संभाले, तो ओम की ध्वनि दी जा रही थी, तो धीरे धीरे प्रचार हुआ ये ओम की मंडली है, ओम मंडली है। तो बाबा ने ओम मंडली के नाम से एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में 8 बहनों को चुना, क्योंकि बाबा के सत्संग में से अधिकतर सब बहनें आती थी, और भाई जो आते थे वो जो रिटायर होते बुजुर्ग होते घरों के 10-12-15 वो बैठे होते। तो बाबा ने कहा, वंदे मातरम, अब मैं इन कन्याओं माताओं के द्वारा स्वर्ग बनाऊंगा, ये स्वर्ग का द्वार है। एक तरफ लोग कह रहे हैं नारी नरक का द्वार है, और बाबा कह रहे हैं नारी स्वर्ग का द्वार है, और स्वर्ग का द्वार है इससे स्वर्ग की स्थापना होगी। तो बाबा ने एक ओम मंडली का ट्रस्ट बना करके, जो बाबा की संपत्ति आई बंटवारा हो करके, इनके आगे समर्पित कर दी, और मुख्य ट्रस्टी बनाया ओम राधे को, जिनको हम अभी जगत अम्बा सरस्वती माँ कहते हैं। अभी आपको बताएंगे इनके नाम क्यों परिवर्तन हुए, कैसे बदल गए, क्योंकि स्कूल के लौकिक घरों के नाम तो अलग थे, ये रामा, ये राधा, ये शोभा, ये गोपी, ये सब दादियों के अलग अलग नाम हैं, और बाबा का नाम लेखराज, प्यार से बाबा को कहते थे लखीराज बाबू। अब लखीराज बाबू ब्रह्मा बन गया, कैसे बन गया, लोग तो अभी भी पूछते ना, भाई ब्रह्मा इनको आप क्यों कहते हो, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो जब शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया और स्थापना शुरू हुई तो बहुत विरोध होने लगा, 2-3 महीने में ही इतना हंगामा हो गया। लेकिन बाबा ने 37 में स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही ओम मंडली का ट्रस्ट बनवाया और उस ट्रस्ट की सारी जवाबदारी बहनों को सौंप दी कि जो भी सत्संग में आएगा उसको ओम राधे सत्संग कराएंगे। और बाबा अपने परिवार को लेकर के कश्मीर चला गया। अब इनके घरों में जो विरोध हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात, बाबा ने अपनी बच्चियों की जहां शादी की थी वो बच्चियां भी एकदम पक्की कि मुझे तो भी श्री कृष्णपुरी में जाना है, मुझे तो पवित्र रहना है, मुझे तो शुद्ध खाना है। उनके घर वाले भड़क गए दादा के लिए, दादा ने कौन सा ज्ञान इनको दे दिया, शादी इनकी क्यों कराई। तो बहुत सारी बातें बहुत विरोध के रूप में आई, और जो परिवार के परिवार आने लगे उनके घरों से भी यही मान्यता, ये क्या ज्ञान है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बाबा अपने परिवार के साथ सबको साथ लेकर के चले, और इन कन्याओं माताओं को एक बहुत अच्छी शक्ति देते पढ़ाते गए। तो जो विरोध हुआ उन सब का सामना मम्मा ने किया, ये सरस्वती माँ ने, जिसको हम उमरादे कह रहे हैं, क्योंकि पहला कोर्ट केस हो गया। और कोर्ट में जब बात आई तो वो मंडली की इंचार्ज हमारी राधे है। अब वो गई कोर्ट में, वो तो श्रेणी शक्ति थी, अनेक अवतार उसके दिखाए ना, दुर्गा सरस्वती काली, तो वो इतनी शक्तिशाली आत्मा थी। तो जज के सामने जब पहुंची तो जज ने कहा कि गीता सामने रखी थी कि तुम गीता पर हाथ रख करके बोलो कि हम भगवान को हाजिर नाजिर समझकर जो कहेंगे वो सच कहेंगे। बस इस बात को उन्होंने, मम्मा ने पकड़ा, कहा क्या बोल रहे हो, भगवान हाजिर नाजिर मेरे सामने कहाँ है, मेरी नजरों के सामने तो आप हाजिर हो, और अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ। जज कहे कोर्ट का नियम है, बोले जब कोर्ट का नियम ही झूठा है तो मैं सच कैसे बोलूंगी। तो गुस्से में आ गया, हथकड़ी लगा दो इनको, बोले लगा दो हथकड़ी, लेकिन आप अपने कोर्ट के कायदों पर ध्यान दो, आपके कायदे गलत बने हुए हैं। हम मम्मा ने डिबेट कर दिया उनसे, तो फिर चुप हुआ जज, दो तीन प्रश्न कर दिए, अच्छा ठीक है आप बताओ कि ये छोटी छोटी कुमारियां शादी करके आई हैं अभी नई नई, और ये ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रहे हैं, शुद्ध सात्विक अन्न किस लिए खाएंगे, क्या आप लोगों ने इनको सिखाया है। तो मम्मा तो बेधड़क धाकड़ थी ना, तो बोली कि आपसे मैं एक प्रश्न करती हूं, आज किसी भी पुरुष को वैराग्य आता है, वो अपनी पत्नी को विधवा बनाता है, बच्चों को अनाथ बनाता है, जंगल में चला जाता, आपके कोर्ट ने आपके कानून ने कौन सी नियम बनाए उनके लिए कि आप घर नहीं छोड़ सकते हो, आपको ऐसे नहीं पति पत्नी का संबंध बिखेरना है, उनके लिए पुरुष के लिए कोई आपके कायदे नहीं, और ये बहनों के लिए सब कायदे क्यों बने हैं, और ये बहनें तो अपने घर को भी नहीं छोड़ रही, अपने पति को भी नहीं छोड़ रही, परिवार को भी नहीं छोड़ रही, बच्चे हैं तो बच्चों को भी प्यार से पालना दे रही हैं, फिर भी इनके घर में विरोध हो रहा, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम ऐसी देवताओं की नगरी में जाएं, इतना शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति को बनाए, आदर्श प्रवृत्ति बनाए। तो जस चुप, कोई कायदा तो था ही नहीं दूसरा, और दो चार प्रश्न किए, उन सब का उत्तर मम्मा ने ऐसा दिया जो जज को कहना पड़ा ठीक है आप अपना सत्संग भले चालू रखो, बंद नहीं करो, लेकिन बाबा की सुरक्षा के लिए कोर्ट का आदेश है कि बाबा अपने स्थान को चेंज कर लें, हैदराबाद की बजाय वो कराची आ जाए, और बाबा का घर कराची में पहले से ही था। कराची और हैदराबाद में केवल ट्विन सिटी हैं, लेकिन नदी है बीच में। तो बाबा तो वहां आ गए परिवार सहित, अपने घर में रहने लगे, और पूरा सत्संग मातेश्वरी जी लेकर के बहनों को जो समर्पित हो चुकी थी उनको लेकर के दूसरे भवन में रहने लगी बाजू में। अब जितनी लगन लगी थी बहनों में माताओं में वो सब घरों से भागने लगी, और बाबा कहे कोई ऐसे नहीं आएगा, सब अपने पिता से पति से संरक्षक से पत्र लेकर के आएंगे, और उस पत्र में लिखाएंगे कि मैं ओम राधे के पास ओम मंडली में ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए जाऊंगी, और उन्होंने कैसे विधि से युक्ति से सब ने छुट्टी लेना अपने घरों से शुरू कर दी। अब छुट्टी ले ले करके जब सत्संग में आ गए और बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुलवा दी, जितने बच्चे आए थे बोर्डिंग खुलवाई, सिलाई स्कूल, और सत्संग चल रहा है लेकिन बाबा अलग कमरे में रहते, कभी लिख के देते, कभी छत से मुरली चलाते और वो सब पहने सुनती धारण करती। अब उसमें क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा तो लौकिक में शास्त्र पढ़े हुए थे, बहुत कुछ दुनिया का अनुभव था, ज्ञान था, इसलिए कौन बोल रहा है, शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, ये कोई बात किसी को समझ में नहीं आती थी। इसलिए बाबा ने, शिव बाबा ने बहुत विधि से एक छोटी बच्चियों को तैयार कर दिया, जो सत्संग में, स्कूल में, बोर्डिंग में आई, 9 साल की 10 साल की 8 साल की, जो पवित्र बिल्कुल इनोसेंट कुमारियां, उनको ट्रांस में बुलाना शुरू कर दिया। और वो ट्रांस में जब जाएं तो उसमें सबसे नंबर वन एक कुमारी थी जिसका नाम था शोभा। वो अपनी माँ के साथ, मौसी के साथ आई थी सत्संग में और वो 9 साल की उम्र में बैठे बैठे ट्रांस में गई। और ट्रांस में जाकर के जो आपको ज्ञान सुनाया जा रहा है, चित्रों में देखते हो आप ब्रह्मा कुमारी के, पहला चित्र उसने देखा कि जो बाबा यहाँ है वो ऊपर दिखाई देता है, तो उसको डर लगा कहीं ये मेरा बाबा शरीर छोड़ के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ऊपर देख करके आई और नीचे आके रोने लगी। तो दादियों ने, बहनों ने पूछा, क्या देख के आई हो तुम, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? बोली, जो बाबा हमारा यहाँ है वो ऊपर चला गया, ऊपर जाके चला जाएगा। तो बाबा तक जब बात गई तो बाबा ने बुलाया, बच्ची इधर आओ, तुम फिर से जाओ ट्रांस में, फिर ट्रांस में जाके पूछो तुम कौन है, मेरा बाबा तो नीचे बैठा है, तुम ऊपर कौन है? बच्चों का जैसे बच्चे वैसा पिता, ये पुरुषार्थ थी ब्रह्मा ही। जब संपन्न बनेगा, संपूर्ण बनेगा, तो अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में इस सूक्ष्म वतन में रहेगा। अब ये बात उस समय 37 में बाबा ने ट्रांस के द्वारा 3 लोकों का बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया। अगर आप ये ज्ञान को समझेंगे ना, लोगों की समझ में नहीं आता है कि आज 800 करोड़ से भी अधिक आबादी है और सृष्टि में इतनी अधिक जनसंख्या वृद्धि और विस्तार हो रही है, जब इतना अचानक बड़ा भयानक विनाश होगा, कहाँ जाएंगे सब? और अगर बढ़ रही आबादी तो कहाँ से आ रहे हैं, उनका घर कहाँ है, स्टॉक कहाँ है? तो शिव बाबा ने अपनी रचना का ज्ञान दिया, जो रचयिता है वही रचना का ज्ञान दे सकता है। तो बीज ने, उस रचयिता ने अपनी रचना का ज्ञान दिया कि निराकारी दुनिया आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको भक्ति में ब्रह्मांड कहते हैं, परलोक कहते हैं, परमधाम कहते हैं, वो आत्माओं का घर है जहां आत्माएं परमात्मा के साथ निवास करती हैं। और जब इस सृष्टि पर आती हैं तो यहां आकर के शरीर धारण करती हैं और पाठ बजाती हैं। और जो आत्मा पहले आई है वो भी इस चक्र में, इस ड्रामा के, इस नाटक से बीच में वापस नहीं जा सकती। नाटक शुरू होता है, सभी एक्टर्स धीरे धीरे स्टेज पर आते हैं और जब नाटक समाप्त होता है तो सब इकट्ठे होकर थे, फिर उसके बाद ड्रेस बदलते हैं और घर जाते हैं। तो ये सृष्टि चक्र एक नाटक है, इसमें सूर्य और चांद की ये बत्तियां हैं, एक बहुत बड़ा ये सृष्टि मांडवा है और इस रचयिता इसका एक है, रचना भी एक है। आज कितने वैज्ञानिक, कितने पढ़े लिखे लोग चांद पर, मंगल पर, दूसरे ग्रहों पर दुनिया ढूंढ रहे हैं और बाबा बता रहे हैं सृष्टि केवल एक ही है, रचयिता एक है, रचना एक है। और ये जितनी बत्तियां हैं, चाहे वो नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये सब इस मांडवे की बत्तियां हैं, रोशन करने के लिए हैं। ये बाबा ने उसी समय बता दिया। और उसके बाद आप लोगों के कुछ प्रश्न उठे होंगे, उठते भी होंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ये नियमों पर इतनी धारणा और दृढ़ता क्यों है, और अगर सभी लोग ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, जब देवताओं को भी बच्चे हैं तो कैसे हुए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, श्री राम श्री सीता प्रवृत्ति मार्ग में हैं, तो ये कौन सी प्रवृत्ति भगवान ने रची जिसके अंदर कोई भी बुराई कोई भी विकार उनके जीवन में नहीं था। इसलिए देवताओं की महिमा में हम सब गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। अब ये मनुष्य सृष्टि की ही रचना है, वो मनुष्य ही है, लेकिन उन मनुष्यों में ये सब दिव्य गुण है और उन दिव्य गुणों के कारण वो देवता कहलाते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, श्री राम श्री सीता है, श्री राधे श्री कृष्ण है, और ये सब प्रवृत्ति के अंदर है, एक आदर्श परिवार है, लेकिन उस परिवार में विकार नहीं है, वो संपूर्ण निर्विकारी है। तो जब ये बच्चियां ट्रांस में जाती तो सब कुछ बाबा वहां से इसको दिखाते कि जन्म कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी, विस्तार कैसे होगा, फिर राजाई कैसे चलेगी, कितने राजाएं होंगे और कितने जन्म होंगे, आयु कितनी होगी, भाषा कितनी होगी, एक एक बात ट्रांस में जाके सुना देख के आती और फिर सुनाती, फिर बाबा को बताया जाता, बाबा उसको पक्का कराते कि हाँ अब बच्चों को बोलो जो ऊपर देख के आए या तो चित्र बनाए या नाटक करके दिखाए स्टेज पर। अब ये सब बच्चे नाटक करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कैसे दिखाया, दो प्रकार के दिखाए भक्ति में, एक दिखाते हैं कि वो वैकुंठ नाथ है, जब सृष्टि में प्रलय हो गई तब वो अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, नंबर वन फर्स्ट प्रिंस है। और दूसरा दिखा रहे हैं जेल में, उनका कंस के राज्य में जेल के अंदर जन्म हुआ, और वो जेल वाला जन्म द्वापर युग का है, और सतयुग का जो जन्म फर्स्ट प्रिंस का है वो सतयुग का, वही श्री कृष्ण श्री नारायण श्री राधे श्री लक्ष्मी। अब ये सारा ज्ञान शिव बाबा ने इन बच्चों के द्वारा स्पष्ट करना शुरू कर दिया, लिखा भी गया और बाबा उसको फिर और गहराई से स्पष्ट करते हैं। तो योग बल से जन्म होता है सतयुग त्रेता में, द्वापर और कलयुग में भोग बल है, विकारों का बल है, इसलिए जन्म की पद्धति परिवर्तन हुई है, लेकिन ये जो भोग वृत्तियां हैं विकारी दृष्टि वृत्ति है उसको परिवर्तन किया परमात्मा ने, संकल्प उठा और योग लगा परमात्मा से और वो बच्चों के जन्म हुए। तो सतयुग त्रेता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, इसलिए आज के मानव जब देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो क्या महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप परम पवित्र हो, हम तो पापी हैं नीच हैं कपटी हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, जिसके माता पिता इतने गुणवान हैं पवित्र हैं उनके बच्चे से अवगुणी कैसे हो गए। आज हम अपने को देवता नहीं कहला रहे, सनातन धर्म के हम कह रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म के हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा बच्चे तुम्हारा सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और वो तुम देवी देवताओं के गुण गंवा बैठे इसलिए तुम हिंदू कहलाने लगे, हिंदू आपका धर्म नहीं है। अब ये सब बातें उस समय बाबा ने शिव परमात्मा ने इन बच्चों के द्वारा बताई और वो फिर यहां ज्ञान के चित्र बनाए गए। अभी उस समय पार्टीशन का समय था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, इन बच्चों को कुछ पता नहीं, बाबा उनको एकांत में ले जाते, सागर के किनारे पर गुफाओं में अलग अलग बिठाते थे और खूब तपस्या कराते, एक तरफ ट्रांस का पाठ चल रहा है, दूसरी तरफ ये सब बच्चे जितने आए 400 के लगभग उस सब जाकर के ड्रिल करते एक्सरसाइज करते और फिर योग में बैठ करके बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करते। जब फुल शक्तिशाली आत्माएं बन गई। तब बाबा ने 1950 में, पार्टीशन तो 47 में हुआ, 50 में निश्चित किया कि अब भारत भूमि से ज्ञान देना है, क्योंकि वो पाकिस्तान बन गया। पहले तो भारत ही था, लेकिन फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना। और बाबा को कई यहाँ के लोग संबंधी और साथ में बाबा के गुरु, लास्ट गुरु माउंट आबू में रहते थे, जिनका नाम था गंगेश्वरानंद, उनका आश्रम है यहाँ, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन वो यहाँ रह करके तपस्या करते थे। उन्होंने बाबा को कहा, बाबा आप कैसे भी करके आबू आ जाओ, ये स्थान बड़ा अच्छा है। तो बाबा ने बहनों को भेजा और फिर यहाँ पर एक भरतपुर राजा की कोठी थी, वो बहुत पसंद आई, फिर वो ले लिया और वहाँ आकर के 15 मई 1950 पहले शिप से सारा सामान लेके आए, कराची से ओखा बंदरगाह पहुंचे और फिर ओखा बंदरगाह से पूरी ट्रेन बुक करके आबू रोड आए, फिर माउंट आबू आए। लेकिन एक साल के अंदर इतने पेपर आए, क्योंकि लोग सागर के किनारे थे, इनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, कोई दवाई डॉक्टर नहीं था, और यहाँ आते ही अधिकतर सब बीमार पड़े। ठंडी हुई बहुत जुलाई अगस्त में, बरसातें हुई, न डॉक्टर है, न दवाई है, न पैसा है, क्योंकि पैसा जो अच्छा संपत्ति थी वो सब किराए भाड़े में खत्म हो गई। अब एक साल के पेपर में कुछ, जैसे कोई झाड़ हिलता ना, ऐसे हिला। और बाबा बेफिक्र भाषा कि शिव बाबा कुछ चाल चल रहा है, बच्चों की कोई परीक्षा ले रहा है, इससे कोई नया रास्ता खुलेगा। अब नया रास्ता क्या खुलेगा, बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो ज्ञान है ना, ये सबको देना शुरू करो, बांटो। ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है। और ये बहनें लेके चित्र गई, सबसे पहले कुंभ मेले में प्रयागराज इलाहाबाद में चित्र लेकर के ज्ञान देना शुरू किया। और उनको जब देखे लोग तो ये तो लगते नहीं संसार के लोग हैं, पवित्रता का ओरा, 14 साल की तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन, इतनी अच्छी उनको भासना है कि ये देवियां हैं, ये साक्षात कुमारियां नहीं। तो बाबा ने, उन लोगों ने देख करके उनको कहा, ये स्थान आपके लिए नहीं है, हम आपको मकान देते हैं। सेंटर खुलने लगे, दिल्ली में खुला, कानपुर में खुला, लखनऊ में खुला, ऐसे निमंत्रण मिले और अनेक सेंटर खुलने लगे। इतिहास लंबा है, समय की सीमा है, मैं 60 में बताता हूँ। 65 में मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा और 69 में बाबा 93 वर्ष की आयु में अव्यक्त हुए। जो पहली कुमारी शोभा, जिसका नाम था, एक दिन बाबा ने कराची में ही सबके नामों की लिस्ट मंगाई फ्रांस में ही, और एक कागज पर लिखवा करके ऊपर आए तो बाबा ने फ्रांस में बहन जो गई उसके द्वारा हरेक नाम के आगे उसके कर्तव्य और गुणवाचक नाम लिखवा दिए। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा कौन है जिसके द्वारा शिव बाबा ने नई सृष्टि की रचना की? तो ये जो दादा जिसके द्वारा शिव बाबा प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, ये सृष्टि का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा है। और इनकी सबसे पहली बेटी जिसने यज्ञ को संभाला वो है सरस्वती, जिसको जगत अम्बा नाम दिया। दादी का नाम रामा था, इनको कहा ये प्रकाश की मणि है। ऐसे सबके नाम परिवर्तन किए। और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए हैं तो जो सबसे पहली कुमारी ट्रांस में गई थी 9 साल की शोभा, उसका नाम पड़ा था, बाबा लौकिक साकार में कहते थे, गुलजार बच्ची है, फूल जैसी कोमल है। लेकिन शिव बाबा ने उनको नाम दिया हृदय मोहिनी। और हृदय मोहिनी के तन में 21 जनवरी 69 को बाप दादा ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद कहा, अभी आप बच्चों को, बहनों को, जैसे सूर्य चांद जब छिप जाते हैं तो तारे रोशनी देते हैं, तो अब आप बच्चे निमित्त बन करके इस विद्यालय को संभालेंगे। और फिर बहनों ने अपने हाथ में सारी यज्ञ को संभाला और सब भाई बहनों को संगठित करके जो कुछ साकार में बाबा ने कहा था, विदेश में जाएंगे, हर धर्म वाले सुनेंगे, गांव गांव में सेंटर होंगे, गली गली में होंगे, तो बस वो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। धीरे धीरे सेंटर्स खुलते गए, वृद्धि हुई, और दादी जानकी जो पूना में रहती थी उनका ही स्टूडेंट लंदन में जिसने सेंटर खुलवाया, तो बाबा ने दादी ने 1974 में दादी जानकी को लंदन भेज दिया। वो पढ़ी लिखी नहीं लौकिक में, 3-4 क्लास पढ़ी, लेकिन उन्होंने 140 देशों में 40 साल रह करके सेवाएं दी और खूब सेंटर्स खोले। जहां पर कदम रखा वहां सेंटर खुले। तो ऐसे करके सेवाओं का विस्तार करने के लिए यहाँ पर जोन बनाए गए, सब जोन बनाए गए, फिर अलग अलग विंग बनाए गए, प्रभाग बने, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर, हेडक्वार्टर, हर वर्ग की सेवा हो, कोई वर्ग वंचित न रहे। तो आज 90 सालों के इतिहास में जो 8-10 लोगों से बीज पड़ा था, आज 14 लाख से भी अधिक परिवार है। पारिवारिक जीवन में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके, पति पत्नी अगर दोनों एक मत होके चलते हैं तो कोई टकराव नहीं होता, उनके घर मंदिर बन जाते, आश्रम बन जाते। लेकिन अगर एक आता है दूसरा नहीं आता है, तो विचारों में और धारणाओं में अंतर आने के कारण थोड़ा विरोध होता है। इसलिए आप सब जो साथ आए हैं वो भाग्यशाली हैं। कौन कौन साथ आए हैं? साथ माना दोनों आए हैं, पति पत्नी। आपके घर तो मंदिर बन ही जाएंगे, बनेंगे ना। लेकिन जो अकेले अकेले आएंगे वो क्या करेंगे? बनाएंगे? आपको पति को साथ लाना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा होगा। थोड़ा समय लगता है उनको समझाने में, क्योंकि नए धारणाओं को, नए जीवन को अपनाने में, और लक्ष्य है हमारे सामने। कोई भी विद्यालय बिना लक्ष्य के नहीं होता। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसमें मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही, और वो देवताएं जब यहाँ पढ़े हैं तब तो श्री नारायण श्री लक्ष्मी बने हैं। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने कब करनी की थी, वो समय कब था? क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आया और सतयुग में उन्होंने राज्य किया। तो ये जो समय चल रहा है, ये संधि काल का समय है जिसको हम संगम कहते हैं। और इस संगम समय पर स्वयं परमात्मा नई सृष्टि की रचना के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए, और उन्होंने 90 वर्षों में इतनी सेवाएं दी हैं जो मनुष्य को देवता, नर को श्री नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाई। अब आप यहां से जाकर के 7 डेज का सिर्फ कोर्स लेना, पूरा ज्ञान स्पष्ट होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या कर्म करने हैं, कर्म अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म पुण्य कर्म क्या है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है। और उसका केवल 1 घंटे का रोज का लेसन होता है। तो आप अपने घर को मंदिर बना सकें और अपने विकारों को, बुराइयों को सहज जीत सकें। क्योंकि इस समय कलयुग के अंदर लोग सोचते इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी, और परमात्मा कहता है इसी का त्याग करके नई दुनिया बनानी है। तो नई दुनिया का स्थापक हम सब का पिता परमात्मा अभी अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत गुप्त रीति से कर रहे हैं। अगर आपने पहचान लिया, निकाल ले सकेंगे। तो ऐसी हमारी सद्भावना है। विस्तार बहुत है इतिहास का, इसकी 2 बुक बनी हुई हैं जीवन कहानी से संबंधित, लिटरेचर में यहाँ है, आप ले जा सकते हैं।